Pues we kunnen ook voor je zoeken, je hebt zoiets in zoeken. Dus ik heb hier een voorbaat met het taal mee. Voorbaat is een beetje, je is met bezoekers en zelfs net ik had je mocht video, wat ik ook had. Dus met die Koran pak die eigen verliet. Maar die nog een andere mushtarak mazmoon keek je. Maar we hebben het niet aan waarom. Allah te daro aur taqwa ikhtiyar karo tino ayat padre bishr pun iman walo allah te daro aur taqwa ikhtiyar karo halanke quran mein wo ayat ki jis se nikah ka zikr shaadi ka zikr lekin tino ayat mein kal ki baat ka naam nishan hai to zehen mein kya aa raha hai ki nikah ka maqsad kya hai par baat darasal ye hai ke jaise zindagi ka koi bhi chhora بغیر اللہ کے خوف کے نہیں چل سکتا یا ایک ملک ہو یا ایک فیکٹری ہو ایک پرچون کی دکان ہو یا گھر ہو مثلا ایک حاکم ہے اور 18 کروڑ اس کی رعایا ہے اگر اس حاکم کو اللہ کا خوف ہے اس 18 کروڑ عوام کے حقوق کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے تو ایسا حاکم رات کو چین سے کبھی بھی نہیں سو سکتا دن میں کبھی چین سے کھانا نہیں اگر اللہ کا خوف ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا خلیفہ اور رویا کرتے تھے کہ عمر اگر تیری سلطنت میں ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو تجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا اور اس خوف کو ایسے راتوں کو پیش کرتے تھے کرتے تھے لیکن جو بچے تو نہیں اپنے خادم حضرت کو ساتھ لے لیتے اور پھرتے ایک بار تو نے کہا کہ آبادی سے باہر جنگل میں آگ جلی ہوئی ہے مدینہ منورہ تو چھوٹا سا شہر تھا تو یہاں بڑی عمر کے بیٹھنے میں جو 40 سال پہلے حج پہ گئے انہوں نے کوئی قتیل تھی بس تھوڑی تھی اس کے اندر اندر نبی لگا ہوا تو آبادی سے باہر آگ جل رہی ہے تو دیکھ کے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ عورت ہے چند بچے ہیں اور چولہا جلا ہوا ہے لکڑیوں میں اس پہ ہانڈی رکھی ہے بچے رو رہے ہیں پوچھا کہ تم کون ہو کہ ہم مسافر ہیں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہ بھوک سے بیتاب ہے بھوک سے بیتاب ہے کئی دن سے کھانا نہیں ملا کیا ہانڈی میں کیا پکا رہی ہو کچھ بھی نہیں ہے بچوں کو بہلانے کے لیے چولہے پہ چڑھا دیے اب وہ عورت پہچانتی تو نہیں تھی کہ کون کہہ رہی میرا اور عمر کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا وہ نہیں پہچانتی تھی کہ کون ہے تیرا اور عمر کے پیر کیسا قیامت کا ہوگا تو حضرت عمر نے کہا کہ عمر کو تیرے حال کی بلا کیا خبر پہلے کیا پتا تیرا حال ہے کہنے وہ ہمارے امیر بنے ہمارے حاکم بنے ہمارا حال کی نے خبر کی کیونکہ حاکم کے ذمے تو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 17 کروڑ سے صرف میں کیسے دیکھتا اس کا تو نظام بنائے اللہ پاک قیامت کے دن جو گھر کا بڑا برادری کا بڑا کوئی تو اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیں گے تفصیل اور کہیں ہم سب کے اپنے رعایا کے بارے میں جواب دو باپ سے اپنے گھر کے بارے میں پوچھیں گے ایک شہر کا ذمہ دار ہے کمشنر ہے ایک گورنر ہے بولے اس سوچ کے شہر بڑا شوق چڑا ہوتا ہے لوگوں کو گورنر بننے کا وزیر آ رہے آسان کام نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آپ کے زمانے میں آپ کو شہید کرنے کے لیے زخمی کیا گیا تو کسی نے کہا کہ آپ کوئی اپنا نائب مقرر کر دیں اور ان کے بیٹے کا نام دیا حضرت عمر کا کہ اس کو خلیفہ بنا دیں جانشین مقرر کر دیں تو انہوں نے کہا کہ یہ خلافت کا خطاب خطاب کے بیٹے میں پڑ گئے میرے میں پڑ گئی یہی کافی ہے حضرت عمر کے والد نام خطاب یہ اپنے بارے میں کہا اب میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میں سے کسی کو لیے خطا پڑے ایسے ڈرتے تھے شوق نہیں تھا کہ مجھے ووٹ دو بھاگتے تھے خلاف اور عمارت تو میں عمر کو تیرے حال کی کیا اگر وہ ہمارے حتیب بنے ہمارا حال کی بنا تو روتے رہے اور عثمان گھر آئے بیت المال سے ایک بوری میں کچھ دانے بھرے سرسوں کے یا جو کے جس کے بھی ہوں گے کچھ گڑ لیا کچھ گھی لیا اس طرح جو پنیر لیا ضرورت کی چیزیں نہیں اور اپنے خاتم کے بوری کو میرے کندھے پہ لاتے اسلم ان کے غلام تھا انہوں نے کہا امیر مومن میں اٹھا لوں گا کہنے نہیں میرے کندھے پہ لاتے ہیں کہنے امیر مومن میں اٹھا لیتا ہوں میرے کندھے پہ لاتے ہیں پھر کہا کیا قیامت میں میرے بوجھ کو اٹھائے گا अगर वो कहते ये तो नहीं होगा अगर मेरे करने पे डाले। अमीरुल मोमिनीन है जिनकी सल्तनत दूर तक पहुंच गई थी, इधर शाम तक, इधर यमन के किनारे तक, फुतुहात का दौर है। तुम्हारे जमान तो फुतुहात का दौर आ रहा था, गलती है शाम तक। और शाम जो है उस वक्त ये जिस वक्त शामिल ये नहीं था, चार तारीख के हुए बल्कि शाम तक एक सुबह बनता था, जिस वक्त चार तारीख हुई है ना, दौड़ने हैं, नजर है और किस अफवाह है, इसके साथ मिलकर एक सुबह बनता था। हजूर की सल्तनत वहां तक पहुंच गई कि मेरे कंधे में डाले लेके गए, अगर हांडी में कुछ दाने डाले, कुछ घी डाला, कुछ गुड़ डाला, तो उस पक्के हरीरा से तैयार हो गया, तो बच्चों को खिला दो, कुछ देर दूर बैठे देखते रहे और कहा जिस तरह मैंने बच्चों को रोते देखा है, हंसता हुए देखना चाहता हूँ। ये है जिम्मेदारी, ये अल्लाह के खौफ के अलावा कोई कर सकता है? ये बता दे, अगर अल्लाह का खौफ नहीं है तो नहीं करेगा। वो तो महलों में पीसीओ गार्ड्स की मौजूदगी में सोता है। अल्लाह का खौफ एक जमाने में दौरा हुआ, तो बड़े जमाने में सैलाब आ गया एक इलाके में, तो गवर्नर को हुक्म दिया कि खबरदार ऐसी मेहनत करो कि एक आदमी का भी नुकसान ना हो। गवर्नर ने पूरे में चोरी का जोर लगाया, फिर आपने जब सैलाब को रोकने और घर वालों को बचाने के लिए अलहमदुल्ला सब बच गए, लेकिन एक कुत्ता बह गया पानी में। अभी उन्होंने कहा हमें सब बच गए, कुत्ता बह गया। अभी उन्होंने रोने लगे, रोने लगे, ए उमर तू अल्लाह को क्या जवाब देगा कि तेरी सल्तनत में कुत्ता पानी में बह गया, रोने लगे। तो मेरे बच्चों आप दोनों से कह रहा हूँ, ये तीनों आयतें जो हुजूर से पढ़ी ऐसी नहीं पढ़ी, अल्लाह का खौफ और तक नहीं। ऐसी एक फैक्ट्री में आ जाइए, एक मालिक है 250 उसके क्लास में, 400 क्लास में, 500 क्लास में, जैसी फैक्ट्री है। अब अगर फैक्ट्री के मालिक को अल्लाह का खौफ है कि 400 क्लास में जो खूब कजा मुझे अल्लाह को देना है, तो एक को भी देर से सफलता नहीं मिलेगी और पसीना भोजन होने से पहले मजदूर की उजरत दे दी जाएगी, और ज्यादा भी नहीं करेंगे, ज्यादा काम भी नहीं रहेंगे। अगर ये है और ये ना होने के बीच क्या हो रहा है, अभी रमजान में 17वां रोजा था, एक चपरासी एक दफ्तर का बड़ा मयूर सचिव का एक दिन मुझे पता बताया, मैंने उनको बुलवाया, मैंने कि क्या हाल है, क्या बताते तीन चार बच्चे मियाँ बीवी हैं, एक छोटा से कमरे के मकान में एक अच्छी आबादी भी रहती है, क्या बताते कुछ भी नहीं बताते। अगर नमक चाट के अफ्तार कर लेते, मगरिब पढ़ के तो थोड़ा सा दाल दलिया होता है, कभी चावल कभी दाल रोटी वो खा लेते हैं, और यही हमारा रात का खाना है और यही हमारी जिंदगी है। एक बच्ची है वो भी थोड़ी सिलाई कर लेती है, 5000 की तनख्वाह, और गरीब आदमी से गरीब आबादी में सिलाई के करके क्या मिलेंगे। मैंने पूछा तो आपको तनख्वाह मिल गई, कहना पिछले महीने के लिए ना इस महीने के लिए, 17वां रोजा था, ना पिछले महीने के लिए ना इस महीने के लिए, क्यों आपके मालिक के पास पैसे नहीं है या नुकसान हो गया, ये तो मुझे पता है, लेकिन जब शाम को घर जाते हैं तो उसके बिक्री में सामान जो लाते हैं घर के लिए वो नहीं रखना पड़ता, मुझे कहीं इतने शॉपर बदनी होते हैं कि मेरे दोनों बाजू दुख जाते हैं जो गाड़ी में रखता हूँ, हर सामान जो कुछ भी होता होगा। अल्लाह का खौफ ना हो तो आदमी मुलाजमी पे जुर्म करता है, और ये जुर्म आज एक मजदूर पे नहीं हो रहा, शहर के लाखों मजदूरों पे हो रहा है। 3-3 महीने की तनख्वाहें नहीं दी है, और कैसे काम करके करो तो पढ़ना जाओ, इसलिए भी यूनियन बनती है, क्यों बनती है, अल्लाह का खौफ नहीं यूनियन बने। ऐसे मजदूर अगर उनको अल्लाह का खौफ है कि मुझे इस मालिक को जवाब नहीं देना, अल्लाह को जवाब देना, ये ड्यूटी है, वक्त पे आएगा, पूरा काम करेगा, वक्त पे तो सबसे भी वक्त समान है, मसलन 8 से 4 बजे तक उसकी ड्यूटी आवर्स है, ये 8 घंटे उसने अमानत, उसके पास अमानत है, जिसके बदले में फैक्ट्री उसको मुआवजा देगी, अगर ये आज की जगह 8:30 बजे आ रहा है और चार की जगह 3:30 बजे चला जा रहा है, उसकी एक घंटे की तनख्वाह शरण नाजायज है, हराम है, क्योंकि उसने एक घंटे की किराए की चोरी की है। अगर उस 8 घंटे में वो कैंटीन में जाके किसी दोस्त से घंटों बात करता है तो ये घंटे उसकी शरण जायज नहीं है, बल्कि इस वक्त में उसको फोन पे किसी से बात करने का भी शरण नहीं है, तो ये 8 घंटे कमाना है इल्ला ये कोई समझ नहीं हो। और ऐसा मजदूर मालिक के फैक्ट्री कारखाने के एक भाग धागे और कील को भी दर्द दर्द नहीं होने देगा, दोनों का बदला है। और बताइए मालिक को कोई शिकायत होगी मजदूरों से, मालिक को अपने दे दो मजदूर का। ये यूनियन जो बन रही है, स्ट्राइक जो हो रही है, काले बैनर लेके खड़े होते थे हमारा हक दिलाओ, ये इसलिए कि दोनों में इलाका हो। बेटा बिल्कुल इसी तरह तो दोनों लाइन निकाल के रिश्ते में सेलेक्ट हो रहे। इन तीनों आयतों में कहा गया कि निकाह होते ही बीवियों के हुकूम जो आपको कराएंगे, इसका जवाब आपको अपने साथ दूसरे को नहीं देना, अल्लाह की इज्जत को देना। और अगर ये खौफ आपको है तो आप सारी जिंदगी इस फिक्र पर लगे रहेंगे कि मेरी बीवी को कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो। और हमारी दोनों बच्चियों को अगर अल्लाह का खौफ और तक्वा हासिल है, निकाह होते ही शौहर के हुकूम का जवाब उसे अल्लाह को देना है, अपने सास ससुर को नहीं। वो बच्चियां सारी जिंदगी इस फिक्र पर लगी रहेंगी कि मेरे शौहर को कोई तकलीफ ना हो। जब दोनों मियां बीवी एक दूसरे को खुश करने में लगे हों, बताइए उस घर में झगड़ा हो सकता है? किसी का मूड ऑफ होगा, दोनों के सामने अल्लाह का फॉर्म नहीं है। शोहर अपने मुताबिक रखता है, बीवी अपने मुताबिक रखती है, और शादी के 15 महीने से झगड़े शुरू हो जाते हैं। 15 महीने अभी रमजान मुबारक से पहले शादी के 15 दिन बाद तलाक आते हैं। बदली मस्जिद से आके मौजूद पढ़ा था रमजान की मशहूर ड्यूटी पर सर, जिससे इस्लाही ताल्लुक के होते तो एक बच्ची रखा थे। 3 महीने में शादी को हुए झगड़ा, घर में इतना झगड़ा, वो अपना मुतालबा नहीं होता मुतालबा, दोनों एक दूसरे को रख के इन शाला थोड़ा और नहीं होगा झगड़े। अब ऐसे ही क्या रहे, ये हमारी चीज है। आप सबसे डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, हमारे अकाबिर में से थे, हजरत आदिल रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे, और आप यहाँ शुमाली नजराबाद में एस ब्लॉक में रहते थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। इंतकाल के बाद 25 साल हो गए हैं, इससे ज्यादा हो गया। एक दिन वो फरमाने लगे कि आज मेरी शादी को 55 साल हो गए हैं, और इस 55 साल में एक दफा की बीवी से लहजा बदल के बात कर रही हूँ। 55 साल में गुस्सा नहीं, लड़ाई नहीं, लहजा बदल के बात करने की नौबत नहीं है 55 साल। और उनकी अहलिया मुहतरमा कहा करती थी, इस 55 साल में एक दफा भी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे पानी दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे चाय बना दो, मुझे कपड़े चेंज कर दो, मैं तो अपनी सादत समझ के ये सब बंद कर दी। ये क्यों हुआ? डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह का था कि जिस बीवी को जाना मेरे साथ आता है उसको खुश रखने में जिम्मेदारी है, और उनकी अहलिया को यह ख्याल था कि डॉक्टर साहब को खुश रखने में जिम्मेदारी है। जिस 55 साल में तो झगड़ा नहीं हुआ, नमूना है, मैं ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा कि बस सिर्फ तसव्वुर है। एक नहीं, मैं आपको बीचियों गिरा सकता हूँ कि शादी के 60 साल में भी एक दिन झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ जिसके दिन अल्लाह का हो। तो बेटा अब तक जो अल्लाह के खौफ ने तकवा से जमीनों से तो तौबा करो, आज से नियत करो कि हर चीज में अल्लाह का हक अदा करूंगा, और दुनिया वालों के जो हकूक मेरे जिम्मे हैं उसको पूरा करो। ये सिर्फ बीवियों के हकूक के बारे में नहीं है, सबसे बड़ा हक किसका है? अल्लाह का। शादी के जोंझलों में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है जो हक करती है। सबसे बड़ी चीज क्या है? नमाज। तो अल्लाह ने हमारे जिम्मे नमाज की कदा होनी चाहिए, खासतौर से फजर में। फुका इकराम ने लिखा है, फुका इकराम ने लिखा है कि मियां बीवी के जिस मिलने से फजर की नमाज अदा हो जाए, और उस दिन के मिलने से हमल ठहरा यह औलाद लापरवाह में न होगी। मोबाइल नाम का फैसला है मेरा नहीं, नमाज ऐसी चीज है तो खेल तमाशा ना बनाया जाए। फोन दौड़ते हैं रात को देर से सोना शादी के बाद सब रात दस पड़कियों पर जिनके पास अल्लाह के हक को अदा करना, उसके बाद उसे रसूल का हक है तो दूसरे की सुन्नत पे चलना, उसके बाद हमने माँ बाप का माँ बाप का। अगर इसमें पहले सीख के आपने आपको बहुत नाजुक तराजू लेके पड़ा होगा, बहुत नाजुक जिसमें एक व्यक्ति का भी वजन आ जाए और तराजू लेके पड़ा होगा कि जो माँ बाप का हक है वो उसको देंगे और जो दीदी का हक है वो उसको देंगे। अगर दीदी की तरफ पल्ला झुका तो माँ बाप की हक चलती, और अगर माँ बाप की तरफ पल्ला झुका तो दीदी की हक चलती। यही हो रहा है, जो दीदी के हो जाते हैं वो माँ बाप की हक चलती है, और जो माँ बाप के हो जाते हैं दीदी की हक चलती है। बिल्कुल नौकरानी बना के रखते हैं, ऐसे लाल बेटा ऐसे लाल ऐसे लाल है। और संहिता भाई को मेरी बीवी और माँ की बनी के लिए हर वक्त चल रहे चल रहे चल, तो मैंने कैसे अलग रखो मैंने दीदी के लिए उतार रहा है लेकिन घर वाले सही आते हैं। मैंने कि इस पर घर वालों की नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि शरीयत ने कहा है कि अगर औरत के दिल में अलग मकान दो तो उसके शरीर हमें देना पड़ेगा। मुश्किल तो ये आज हर चीज सीखते हैं, शादी के अहकाम नहीं सीखते हो उसका शरण हक है, शरण हक है उसको अलग मकान दिया जाए। फिर उसी मकान में एक पोर्शन ऐसा कर दिया जाए जिसको किसी का दखल ना हो, शरण हक है उसको, आप मना नहीं कर सकते। आप मैंने कह दिए बीवी के बाद कह दो कि अलग तो करो लेकिन पहले माँ बाप को देखूंगा फिर तुम्हें देखूंगा, तुम्हारा हक दे दूंगा लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ दो, ये ध्यान बनाओ। तो तवाज़ुन कायम करना है बेटा, बीवी को भी माँ बाप फिर ज्यादा झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं। जाहिर रिश्ते ही ऐसा है, वो तो माए जो सगी भतीजी और भांजी को ब्याह के लाती है ना फिर वो भी बहू बन जाती है भांजी भतीजी की रहती है, झगड़ा तो होता ही है। आपको तवाज़ुन कायम करना है कि दोनों को राजी कर देते हैं, ठीक है बेटा। और सिर्फ ये तीनों आयतें आप दोनों ने ठीक कह रही है कि लड़की वालों से भी कह रही है और लड़के वालों से भी कह रही है। लड़के वालों की तीन आयतें कह रही हैं कि अब तुम किसी की बेटी को लेके आ रहे हो जिसको बेटी समझ के रखना बहू समझ के ना रखना। ये दूल्हा के माँ बाप को ये आयतें कह रही हैं कि जिनकी बेटी को लेके आ रहे हो उसको बहू बना के नहीं बेटी बना के रखना। ये बड़ा फर्क है इन दो लफ्जों में, बड़ा फर्क है। अपनी जवान बेटी 19-20 साल की अगर 11 बजे तक सोती रहे सुबह तो माए कहती कोई नहीं बच्चा है जब बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी, और 19 साल की बहू को ब्याह के लाए वो सो जाए तो फिर भाव की उस पर पड़ती है। हमारी अम्मा ने क्या सिखाया था, यही सिखाया था 11 बजे तक थोड़ी सोती रहो। अब बेटी और बहू में ये फर्क है, अगर बेटी को एक कप चाय से बनाना ना आए तो मामूली खाना पका रहे कोई कारण नहीं, ठीक है नहीं शायद जब बोझ पड़ेगा तो ठीक हो जाएगी। और बहू को लाए तो क्या सिखाया था तुम्हारी अम्मा ने, चावल तक पकाने नहीं आते। विष्णु है सिर्फ 18 साल की लड़की की ये मसला। तो मैंने उनके घर वालों से कहा अगर आपको अलगर से संभालने वाली लड़की चाहिए थी तो आप 35 साल की लेके आती, 18 साल की लड़की तो पूरा घर नहीं संभाल सकती, पहले संभाल लेती थी। अब उनमें पढ़ाई उसके बोझ इतने होते हैं जबरदस्ती नहीं होनी कि कॉलेज की तो उनको फुर्सत नहीं। अगर आपसे एक शौक था साथ की तरह की जैसे मैं करती हूँ ऐसी बहू भी करे फिर 25-30 साल की उम्र की लड़की लेके आती, तो वह लड़की लेके आए और वहां बिताने क्यों उसे कहा जा रहा है। और आप दोनों से ही कहा जा रहा है कि जैसे मेरे अपना घर मेरा है अब ससुराल का घर भी मेरा ही है, वो भी मेरे ही घर है। जैसे अपने घर को समझता हूँ ऐसे ससुराल के घर को समझता हूँ। अगर ये ना समझा तो दुनिया के अंदर जितने दामाद रूठते हैं इसका कोई नहीं रूठता होगा, सबको देखा जितने दामाद रूठते हैं इतना कोई नहीं रूठता। क्यों नहीं रूठ क्यों रूठते हैं कि सुशाल का अपना घर ही समय, जबकि क्या हुआ कि मेरा मान नहीं मिला मुझे, नहीं मान क्या होता है, धर्म के खाने को पूछा नहीं, ईद पे गया था तो धर्म की बात नहीं की, अपना घर क्यों नहीं समझा। अपनी बहन के जाके अगर मजबूरियत की वजह से कोई पूछना जाए तो रोता है, शिकायत करता है, बहन सारे के घर जाएंगे तो शिकायत होगी पहले बीवी को, शादी में अलग रूप देंगे ससुराल में शादी है तो रूट पे बैठ जाएंगे, हो जाए साफ सुथरा आ गया पैरों पर टोपी दुपट्टा रख के बनाते हैं, इसको बनाते हैं सिर्फ ससुराल को अपना घर नहीं समझते, वो भी ऐसी घर है। हाँ मैं ये भी नहीं कहता कि ससुराल ऐसा घर बन जाए कि अपने माँ बाप गायब हो जाए, बाज ऐसे भी हो जाते हैं, ससुराल के ऐसे गुलाम होते हैं कि वो अपने माँ बाप को भी समझते नहीं है। मैंने कहा तराजू आपको लेकर खड़ा होना है बिल्कुल बारीक तरह, ससुराल को भी अपना घर समझना ठीक है और माँ बाप को उस बच्ची को बेटी बना के रखना, इज्जत गुजारिश आती है इसके कारण को देखा फल आता ही आप लोगों से तो क्या नहीं सत्य नहीं है ऐसी दरकार है जिस सादगी से लिखा हो रहे ना रोक सकती हूँ वही को भी ऐसी सादगी से होते हैं ऐसे ना हमें तो दिखाने के लिए किसी से सारे घर के आ गए वहां जाकर फिर सारे वही चीजें कहा है लड़की वाले तैयार है इसके लिए। मैं नहीं कह रहा हुजूर से सर ने कहा कि बरकत पाता का वो है जिसमें ना परिंदादा हो ना जिसका हरदादा हो, ये मेरे महबूब का इशारा है। बरकत वाला निकाह बरकत वाली शादी जैसे कम से कम खर्च और मोहसिन मुसलमान साहब के अवसर जितना बढ़ता चला जाएगा बरकत में होना ही चली जाएगी। मैं तो आज सोचा करके ऊपर से नहीं बरकत तो कोई जिसका बाकी भी रहता हो गई है इससे भी हम इस तरफ दौड़ रहे हैं। रमजान से पहले एक शादी हुई पर कॉन्टिनेंटल में जिस हॉल में मेहमानों को बैठाया गया था बारात को उसकी डेकोरेशन का बिल 24 लाख खाने का नहीं हॉल का नहीं सिर्फ डेकोरेशन का बिल 24 लाख था जिसमें 6 लाख का बिल सिर्फ फूलों को था जो उसी दिन हॉलैंड से ताजे मंगाए गए और मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा कि मैंने उनसे पूछी जो शादी में शरीक थे और लड़की वाले उस शादी के दोस्त को सुनाई 24 लाख रुपये डेकोरेशन फिर हॉल का क्या बिल होगा खाने का क्या होगा जहेज का क्या होगा अल्लाह को भी जवाब देना ही नहीं देना। ये एक नहीं है कितनी मिसालें मैं आपको दूं कि शादी के जो जो के वो खर्च करते वो करते हैं अल्लाह की बात असल में इनके सामने हुजूर सल्लम की जिंदगी नहीं है मेरे महबूब ने लगा कि खिला के खाओ पहना के पहनो क्या अगर आम के सीजन में आम हम लाए हैं और कोई भी फल है तो गरीब बच्चे को भी दे दो पड़ोसी अगर इतनी हैसियत नहीं है तो उसके छिलके दरवाजे पे मत फेंकना दूर जाके फेंकना गरीब के बच्चे छिलकों को देख के दिल महसूस जाएंगे कि मेरे पास कर दो हमारे वाले से बात कर दो तो हम भी आम खा लें। कराची में आज है ऐसे जिस शब्द मैंने वाक्य सुना है नमक चाट के रोजाना उनके दरवाजे में अगर पकौड़े समोसे बचे फिर हम दरवाजों में क्या भी है क्या भी क्या कहा कि खिला के खाओ पहना के पहनो। अब हम सोचें जिन बच्चियों की गुर्बत की वजह से शादी नहीं हो रही थी इन लंबे चौड़े पैसों से गुर्बत ही नहीं है मुतदिल घर है नहीं दरमियाने दर्जे का खाते पीते हैं लेकिन ये जो उसके पूरे करते कोई मकान जहेज में मांगता है कोई सामान जहेज में मांगता है पता नहीं क्या क्या खुराफा है जिनकी घर में तीन तीन चार से बच्चियां बैठी उनसे पूछे क्या पीती ये बच्चियां जब किसी को लड़के की शादियां देखती हैं तो उनके सीने में सांप लौटते हैं कि काश हमारे बाप के पास हर भी ब्याह की सुस्ता है आज इन मासूम बच्चियों का रहम खाने वाला हमारे माशरे में कोई नहीं है बातें हम बड़ी बनाते हैं माशरा माशरा अभी तो माशरे की स्पेलिंग से पता नहीं कि क्या हो गई ये माशरा कई बच्चियों में क्या भी थी मेरे पास एक बच्ची का खत आया कि हजरत मेरा ताल्लुक उस कम्युनिटी से है जिसमें शादी के कम से कम 30 लाख रुपये खर्च होते हैं कम से कम मेरे बाप की हैसियत नहीं इसलिए मेरे रिश्ते आते हैं और वापस चले जाते हैं आते हैं वापस चले जाते हैं। अब मेरी उम्र 22 साल हो गई और मेरी कम्युनिटी में 22 साल की लड़की का रिश्ता नहीं आता लिहाजा और सल्लाह ने जो पैसे ले लेके रिश्ते कराने हैं हालांकि साहब से नहीं साबित किए किसी ने पैसे देकर रिश्ता कराया सही साबित थी, लेकिन नई मुसीबत और हमारे अंदर पड़ गई और उनकी फीसें चार चार पांच पांच लाख दलालों की वो जहेज के प्रदेश पे लेती हैं। बड़ी बड़ी मर्सिडीज की गाड़ियां हैं, नाम से उनके बड़े मालूम बड़े लगाती हैं और जैसे चाहे पड़वा भी नहीं उनकी डिमांड पूरी ना हो तो वो दलाले जो है वो हर दूसरे दिन की दूर लेके आ जाती हैं। उस बच्ची का अब जो जुमला लिखा ना बगैर किसी के दिल में गोश्त का दिल है तो वो तो बेचैन वो बगैर नहीं कर सकते थे। इस बात का उस बच्चे ने कहा हजरत तेरी अभी है कि बकरी पूरी श्रेवड़ की सी हो गई है कि खरीदार आए कमर पे हाथ रख के देखे पसंद आ जाए तो ले जाए ना पसंद आए तो छोड़ दिया। जिस दिन वो खत मैंने पढ़ा था मैं कहता सारे दिन खाना खा सका ऐसी बात तो तेरे आंसू कर चुके हैं। ये माशरे की एक बच्ची का खत नहीं है, माशरे की हजारों बच्चों का खत है। उस बच्ची ने कहा मैं माँ को मना करती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं जिल्लत बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। मेरी माँ मेरे पैर पकड़ रही है बेटा तू राजी हो जाओ मैं तेरा भाई भी दोबारा बैठा रहेगा। फिर बात अब यह है जब तक कहीं रहो तो भाई फिर आगे उस बच्ची ने सवाल किया, ये सवाल पांचवे की हजारों बच्चों का है। उसने कहा बताइए हजरत मेरा क्या प्रश्न है, आप बताइए कि ऐसी बच्चियों को क्या जवाब दूंगे कि बेटा द्वारा क्या प्रश्न है, आप पढ़े लिखे सब बेटे आप बताइए क्या जवाब और कौन सा फाया उसके जख्म पे रखूं जिस उस पर जख्म भर जाए। एक बच्ची का सवाल अभी जैसे तरह कहता है कि हम तीन बहने हैं, तीनों ने अपने मास्टर्स किया हुआ है, बाप का हमारे इंतजार हो गया था, हमारे रिश्ते से नहीं आते कि जहेज नहीं मिलेगा। कितनी बच्चियों की उम्र याद इन धूम धड़क की शादियों ने बच्चियों को घर में बाल स्प्रेड करवाए और माँ बाप उनके अंदर से सुबह से मंदिर के बाल देख के डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। ना तो वो नहीं आते थे तो होते वो तो उनका पता है जिनकी घर में दो दो तीन तीन बच्चियों बैठी बाकी वो क्या और लोग कहते हैं क्यों नहीं खर्च करें, ये चीज तो खर्च कर लेंगे आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इनको कमाई का मकसद भी पता है बेचारों को, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी कमाई का मकसद क्या था, ये तो खिला के खाते थे पहना के पहनते थे शादियां करा के शादी करते थे। इसी तरह हाथ में आप दोनों से इस शादी की कोशिश दोनों वाले दोस्त के साथ शादी तुम दोनों भी तैयार हो हैं राजी पे भी तो करना खिला रहे हो बात में नहीं होगी ये भी हो जाए वो भी हो जाए। बेटा अगर ये दीनदार की हिम्मत नहीं करेंगे तो कौन करेगा कौन करेगा। जुल्म की इंतहा है कि शादी हॉलों के किराए 2.5-2.5 लाख हो गए, हमारे कुल बाहर खड़ा बाहर है 2.5-3 लाख रुपए उसका किराया, गरीब बच्चे क्या करें। आखिर जब ये शादी हॉल नहीं थे होटल में शादी नहीं होती सब क्वाले रहते थे होती थी और बड़ी खुशियों वाली शादी होती घरों में खाना खिला के और घरों पर दरवाजे दिखाने आते हम तो बढ़ते चले जा रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। हुजूर का इशारा है कि बरकत शहर वाली शादी से कम सबसे कम खर्च अब ठीक है हम एक दम इससे नहीं आ सकते चार साल को जगह तीन कर दें तीन की जगह दो कर दें एक की जगह सात भी ले लें तब इस चलते हैं दो से नहीं कह रहे बाकी सारे दो से नहीं कह रहे एक वाले लड़के अगर हिम्मत कर लें कि हम ऐसे करेंगे सब क्यों नहीं लड़के ढीले हो जाते हैं कहते कि अगर एक ही नंबर तो शादी होती है तो बेटा एक ही नंबर सुनने के चलने का भी मौका मिलता है तो कहाँ मिलेगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला की शादी सादगी का नमूना है। हजरत अली तशरीफ लाए उसने का पैगाम दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हजरत फातिमा से इजाजत दी बाहर आके एक सहाबी ने सहाबे की जमात को जमा करना और जब सहाबा जमा हो गए कायनात की सबसे अधिक बच्ची जो जन्नत में और सरदार होगी निकाह हो गया। जब महीने बाद जब अपनी हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमद को बुलाया तो फातिमा को अली की घर पहुंचा दो कायनात की सबसे अधिक बच्ची की औसत की हो रही है जिसके लिए चाहा जाता है उसके जन्नत से हुए मेकअप का सामान दरी के जोड़े और जो आहराज के जेवर के सेट ला सकते हैं गुरों से अच्छा दुल्हन बनाने वाला कौन होगा। अगर चाहा जाता है तो उसके जन्नत से दुआ पा सकती थी जो सारे मदीने में शादियां नहीं करते वो तो जाता है वो मंथली नमूना ही बनता है साल भर करने वाला क्या है अगर सात दिन होते तो जरूर नहीं करते कुछ भी नहीं होगा। अब मगरिब के बाद थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो मैंने अहमद का हाथ पकड़ा
अगर फातिमा ने ना कोई जरी का जोड़ा पहना है बीबी पॉलर की तो कोई गाड़ी सच्ची गाड़ी कर रही है वैसे ही एक तो मैं आपकी चली और पहले से लेकर अंदर ही दरवाजा दरवाजा खोला तो अली अपनी अमानत ले लो ये है कायनात की सबसे अच्छी बच्ची की खुशी। अरे हमारी बच्चियां से ज्यादा अच्छी हैं ठीक है हम कर लो तो इस बच्ची से ज्यादा अच्छी बच्ची दुनिया में आई है ना आई थी ये हुजूर ने नमूना है बाकी आपके सारी अपनी शादी है ये भी है मेरे बेटा अल्लाह हम सबको हुजूर अली सलाम की मुबारक तकलीफ को अपनाने की तौफीक अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह।